बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जी, आप सब ज़हनी तौर पे तैयार हैं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अम्री व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। ये जो बीच में मैं खुतबा पढ़ती हूँ, कभी भी आइंदा पढ़ूँ तो आप समझ जाया करें कि अभी हमारा माहौल ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट शुरू कर सकें, तो फिर मैं सोचती हूँ कि चले हम इसके लिए थोड़ा सा एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला का जिक्र कर लें, और ज़हनी तौर पे हम बिल्कुल इस चीज़ को फील करें कि हम सब अब किस चीज़ के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो सब छोड़ दीजिए, अब जो भी हो गया हो गया, जो काम है बाद में उनको बाद में करेंगे। बिल्कुल रेडी? आप सब मिलके जरा ये पहली आयत पढ़िए जो भी आप शुरू करने लगे हम लोग। शाबाश। अब देखिए कि आप सबने ये आयत पढ़ी है ना, मैंने रिकॉर्ड की है, अब बाद में तफसीर सुनेंगे तो फिर आप देखेंगे आप कैसे पढ़ रहे थे। हम जब भी कुरान पढ़ने की बात करते हैं ना, तो हम तजवीद और उसकी लय और उसकी टोन पे बात करते हैं, लेकिन जो इस वक्त बात मैंने फील की है वो ये कि आपके आवाज़ में सोज नहीं था, गुदास नहीं था, और आपकी आवाज़ें इस बात की चुगली खा रही थी कि आप जो कह रहे हैं आप उसको समझ नहीं रहे, वरना ये आयतें ऐसे नहीं पढ़ी जाती। आइए देखते हैं कि ये आयतें हम सबसे क्या कहती हैं। तफसीर पे जाने से पहले हम थोड़ा सा आज के सबक का खुलासा करेंगे। हम अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से आज कुरान पाक के उस मुकाम पर है जिसको आप ख़वातीम बकरा कह सकते हैं। खास बातें हैं जो बाकी पूरे कुरान पाक में हमें नहीं मिलती, अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से है। एक रुकू है, तीन आयतें हैं। बिल्कुल इसी किस्म का एक रुकू हम पीछे भी पढ़ चुके, कौन सा? जिसमें आयतुल कुर्सी थी। फर्क इतना है कि उसमें चार आयतें थी, इसमें तीन है। जिस तरह आयतुल कुर्सी वाला वो रुकू बहुत अहम था और उसके अंदर अल्लाह ताला की तौहीद, उसकी रबूबियत, फिर उसका इंसानों को हिदायत की तरफ बुलाना था, बिल्कुल इसी तरह से ये आखिरी रुकू भी बहुत अहम है। आप कह सकते हैं कि आयतुल कुर्सी अगर तौहीद के मौजू पर कुरान पाक की जामे तरीन आए थे, तो इस रुकू की आखिरी आयत कुरान पाक की। फिर कुछ और बातें जो इसके बारे में है वो क्या, कि ये आयात जो हम पढ़ने लगे हैं ये जमीन पे नहीं नाजिल हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पर तोहफे में अता हुई थी। किसी की बात जो उसने मोहब्बत से कही कि पूरे कुरान के लिए कुरान को ऊपर से नीचे लाया गया, ऐसी हुआ था ना नज़ुल, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, और अल्लाह के नबी के दिल पे आता था। लेकिन इन आयात के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पे बुलाया गया। कोई तो बात होगी, कोई बात ऐसी नहीं होती। और हम कुरान पाक का ये मिजाज देखते आ रहे हैं कि सूरतों का आगाज और सूरतों का इख्तिताम दोनों बहुत अहम है। खास तौर पे अगर आप सूरह रुकू जो हमने मुत्तकीन के बारे में पढ़ा और कुफर पे उसकी बात खत्म हुई, उसको और इस आखिरी रुकू को मिला लेंगे तो आपको दोनों में ईमान की बात दिखेगी। वहां सिर्फ इतना कहा गया कि जालिकल किताबुल्ला रोई बफी हुदल लिल मुत्तकीन, الذین یؤمنون بالغیب. بس کہہ لیجئے کہ وہاں ایمان مجمل تھا. مجمل کہتے ہیں کونسائزڈ, کمپریہنسو, ٹھیک ہے, اور یہاں ایمان مفصل ہے, کھول کے بیان کرنا, یعنی یہاں ایمان کی تفصیلات ہیں. اور ان آیتوں کے اندر حقیقت میں ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق جڑتا ہے کہ ایک بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے, آقا اور غلام کا, عابد اور معبود کا, ساجد اور مسجود کا, یا پھر اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق غور و فکر اور محبت کا ہونا چاہیے. اس سبق سے ہمیشہ ہی میں نے اپنے دل میں, آج پڑھیں, یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن کو پڑھتے وقت اگر ہمارا تعلق باللہ نہ درست ہوا تو پھر کم ہی ہوگا. پیچھے آیتیں بر جس کو آپ کہتے ہیں, لیس البر, رابع 77 میں بھی ہم نے ایمان کی تفصیلات پڑھی تھی اور اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہوئی تھی, تو یہ آیتیں بھی ایسی ہی ہیں. ان آیات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں بہت خوبصورت احادیث بھی ملتی ہیں, جن کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ نے اس شخص کو بڑا ہی غافل قرار دیا کہ جو رات کو سو جائے اور یہ آیتیں نہ پڑھے. ہم خود کو پوچھ لیں, ہم کدھر ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو رات کو سونے سے پہلے ان دو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں؟ اور کیا کوئی چھو منتر, جادو ٹونا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو لکھ لے کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کی معرفت کی باتیں ہوتی ہیں, وہ آیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت دیتی ہیں اور اس میں حقیقت میں انسان اپنے اوپر اور حسبے کی فکر بھی ملتی ہے کہ میرے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا, اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا احساس بھی ملے گا آپ کو, آپ کا اپنا نہ ہونا بھی ملے گا. اور سب سے بڑھ کے نبی جو دوسروں کو کہتے ہیں ان کا خود اپنے عمل کو دیکھنا بھی ملے گا. یہ جو روایت ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, یہ خاص طور پہ آخری دو آیتوں کی آتی ہے, لیکن چونکہ انٹروڈکشن ہے, شروع ہے, تو پھر ہم اس میں اس کو عموماً پورے رکوع پر ہی لے لیتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ آیتیں مجھ سے کیا کہتی ہیں. ہم کو کاٹ دیں, بولتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. پھر دوسری بار, وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. تم اپنے دل کی باتوں کا برملا اظہار کرو یا ان کو چھپائے رکھو, سب کچھ اللہ کے دائرہ احتساب میں ہے, یعنی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو, کیا سوچتے ہو. تم جو کہتے ہو کرتے ہو اللہ کو پتہ ہے, سب اس کے پاس ریکارڈ ہے. ہوگا کیا, فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ, بس جسے چاہے معاف کر دے. وَيُعَذِّبُ, ظلم ہے, زیادتی نہیں, کیا عدل ہے؟ نہیں, رحمت ہے. عدل کی بنیاد پہ نہیں, رحمت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ بہت سارے غلط کام کرنے والوں کو بھی معاف کر دوں گا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بہت ساری نیکیاں کرنے والوں کو عذاب دے دوں گا. اس لیے غلطی نہ کھاؤ کہ اللہ نے جو کرنا کر دے گا, ہو جائے گا. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ڈر گئے. ہم نے تو بھی صرف ابھی اپنے آپ کو سیٹ ہی کیا ہے, پارے صحیح کر رہے ہیں اور پینسل دیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, چلو کوئی نہیں, ترجمہ ہی ہے, سن لو جو بھی ہے, تفسیر ابھی ہوگی. لیکن جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام گھبرا گئے, کیونکہ اس میں ایک تو اللہ کی ملکیت کی بات ہے اور دوسری محاسبے کی بات ہے. پھر کیا ہوا تھا اس کو اگلی آیت کے ساتھ بتاؤں گی, لیکن آئیے ذرا ایک ایک لفظ پہ بات کرتے ہیں. للہ سے کیا مراد ہے؟ نمبر ایک, ہر چیز اللہ نے بنائی, اللہ نے پیدا کی, दूसरी बात, हर चीज उसके सामने जवाबदेह है, हर चीज पर उसका इख्तियार है, हर चीज का मालिक भी वही है और मुदब्बिर भी वही है, यानी बनाने वाला भी है चलाने वाला भी है। फिर अल्लाह का होने से क्या मुराद है कि हर चीज उसकी शाहकारी का एक खूबसूरत नमूना है। कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं, सब मेरा भी तो बहुत कुछ है। जब भी किसी जगह मलकी मालिक होने पर इस सोच के साथ एतराज करने लगता है कि अगर अल्लाह की मलकियत को मान लिया तो फिर उसके मुहासिब होने को भी मानना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसी बातों पे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या बड़ी बात है, अगर अल्लाह का सब कुछ है तो मेरा भी तो है। तो लिख लीजिए कि मलकियत दो किस्म की होती है, एक है कुल्ली मलकियत, कंप्लीट ओनरशिप, अरबी में कहेंगे तो मलकियत है तामा, तमाम से कंप्लीट, पूरे का पूरा किसी का होना, ये क्या होती है। नंबर एक, जिसकी ये मलकियत होती है उसका इख्तियार पूरा होता है, वो उसको बदल भी सकता है, उसको खत्म भी कर सकता है, तोड़ भी सकता है, खुद फायदा उठा ले किसी और को दे दे, उसकी मर्जी। और मलकियत है मलकियत नाकिसा, नुक्स वाली मलकियत, इनकम्प्लीट ओनरशिप। आप इसको अपनी जुबान में समझ लीजिए, एक है लैंड लॉर्ड घर वाला और एक है किराएदार, बस सारी बात इधर पूरी हो जाएगी। हालांकि इसमें भी बहुत फर्क है, लेकिन सिर्फ इसको समझिए, मालिक मकान और किराएदार में क्या फर्क होता है। लिखिए, मालिक मकान के पास किराएदार की निस्बत इख्तियार ज्यादा होते हैं, चाहे उस घर को रखे बेच दे, खुद रहे किसी और को दे दे, पूरा घर किसी को दे दे, आधा दे दे, कुछ में रह ले, कुछ कर ले, एक दीवार यहां से निकाले उधर से कर ले। हालांकि आपको पता है कि यहां तो अपने अपने घरों के इख्तियार भी पूरे नहीं, एक दीवार नहीं खींच सकते जब तक गवर्नमेंट से 7 किस्म की इजाजत नहीं लेते। ठीक है, इसको हम आगे जाके तकाबल करते हैं। लेकिन बहरहाल मालिक किराएदार क्या होता है, वो यूज करता है एग्रीमेंट के साथ, पैसे देता है, फिर आप देखिए कि मालिक किराएदार रह तो सकता है, तब्दीली नहीं कर सकता। मसलन कोई कहे कि मैं इस घर में रहूं 6 महीने के लिए, घर दे दे, लेकिन मैं इसकी एक दीवार बीच में से निकाल के इस कमरे को बड़ा करूंगा, ये अलग बात है कि पहले कोई माहदा हो जाए, मालिक मकान कहता कर ले आप, उसके बाद वो किसी और 4 लोगों को किराए पे दे सकता है, आम हालात में नहीं दे सकता। यानी फर्क है दोनों में कि एक वो कैफियत होती है कि जिसमें कोई किसी चीज को सिर्फ इस्तेमाल करता है, लेकिन दूसरी में उस पे उसके इख्तियार बढ़ता है। यहां बात है लिल्लाह ही, अभी सिर्फ लिल्लाह पे रहिएगा, आगे ना जाए, अल्लाह का है। अल्लाह सुबहाना ताला का सब कुछ कैसे है, मलकियते तामा, इस दुनिया को रखे, इसको बनाए, इसको बिगाड़े, कहीं जलजला आ जाए, कहीं तूफान आ जाए, कहीं बिजली गिर जाए, पानी के चश्मे फूट जाएं, कहीं लोग बिल्कुल प्यासे मरे, पूरे का पूरा इख्तियार है, सब कुछ उसमें है, उसके हाथ में है। जब चाहेगा फाइन्नम अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून, जब चाहेगा कौन कहे। अल्लाह के मुकाबले में अब अपनी ओनरशिप को लेके रखें, पहले पहले तो आपको मिसाल दी है ना मालिक मकान और किराएदार की, अब लीजिए असल हकीकत लिखिए जरा। मैं भी मालिक, अल्लाह भी मालिक, किस किस चीज की मैं मालिक हूं? मसलन मैं अपनी आंखों की मालिक हूं, कान मेरे हैं, हाथ मेरे हैं, घर मेरा, बच्चे मेरे, शौहर मेरा, पैसे मेरे, गाड़ी मेरी, बैंक बैलेंस मेरे नाम पे, सोना चांदी हीरे डायमंड सब मेरे। इट्स माइन, जब कहते हैं ना मेरा माइन मेरा, यकूलुल अब्दु माली माली, बंदा कहता रहता है मेरा माल। मेरा माल मेरा माल, खा लिया थोड़ा मजा आया, टेस्ट बना, जिस्म को ताकत मिली, कुछ घंटे बाद जिस्म से गंदगी बन के निकल गया। पहन लिया जिस्म ढांपा, अच्छा लगा, खूबसूरत लगा, उसके बाद चीथड़े बन गया। और तीसरा उसका वो जो अपने हाथ से आगे भेज दिया, बस बाकी तो सब वो रसा का है, वारिसों का है। अल्लाह के नबी ने पूछा कि तुम में कोई ऐसा है कि जिसको दूसरे का माल अपने माल से ज्यादा प्यारा लगे? है कोई हम में से? यानी दूसरे की गाड़ी देख के अपनी गाड़ी से ज्यादा खुश हो? हम तो आहें भरेंगे जबकि अपने पास गाड़ी हो ना या टूटी भी हो, हमेशा अपनी चीज की खुशी होती है। सच्ची बात है, आप घर लेते हैं तो आपको खुशी होती है दूसरे से, ठीक है रस्मन आपको खुशी हो जाए, लेकिन दूसरे की चीज का क्या मान? बिल्कुल इसी तरह से याद रखें, मैं और आप अपनी आंखों का रंग बदल सकते हैं, लेंजेस लगा लें थोड़ी देर के लिए खुश हो लें और बात है, असल तो नहीं बदलेगी। क्या हम अपना कद बड़ा कर सकते हैं? अपना कद, अपना जिस्म पतला दुबला कर सकते हैं? कुछ हद तक कर सकते हैं, मुकम्मल इख्तियार नहीं है, लेकिन अल्लाह का इख्तियार है। अगर ये जिस्म मेरा अपना होता तो बताइए, पहले सबसे बताइए, जिंदगी में दांत क्यों झड़ जाते, बाल क्यों मेरे सफेद हो जाते, ये चेहरे पे झुर्रियां क्यों आ जाती वक्त के साथ? ले ले, मेरा है भाई, रखे अपने चेहरे को फ्रेश, खाएं अच्छी खुराक, फिगर अपना अच्छा रखे, कब तक बीमारियां क्यों आती हैं? अगर ये जिस्म मेरा होता है, और अगर ये जिस्म मेरा होता तो मुझे मौत क्यों आती? मेरा तो नहीं है, अल्लाह चाहता है कि तुम उसके बन जाओ, इसलिए कहा कि लिल्लाही, सब कुछ उसका है। क्या माफ समावाती, क्या कुछ है जमीन और आसमान के बीच में? अगर मैं आपसे पूछूं तो एक लंबी लिस्ट है ना, सूरज चांद सितारे पहाड़ दरिया फल फूल हजर शजर नजर, जो मर्जी कहते जाइए ये सब अल्लाह का है, मानते हैं ना? लेकिन एक चीज को हम भूल जाते हैं, जहां से इस लिस्ट का आगाज होना चाहिए, जी मैं इन्नी लिल्ला। जब कोई मरता है तो क्या कहते हैं हम? इन्ना लिल्ला, वो जमा का सीगा होता है ना, तो उसमें सब खप जाता है कि बस सब अल्लाह सब में आ गया। सबसे पहले जिसको आपने अल्लाह का समझना है ना, नी वज्जहत वज्ही लिल्लज़ी फ़तरनी, हजरत इब्राहिम की अल्लाह तआला ऐसी तारीफें नहीं करता, उसकी वजह क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि मैंने अपना चेहरा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कर दिया, मती फरमाबरदार। जब तक बंदा खुद को रब का ना समझे बात नहीं बनती। और आज हमारा हाल क्या है कि हम सबके बनते, नफ्स के बनते, मुआशरे के बनते, खानदान के बनते, दोस्तों साथियों रिश्तेदारों के बनते, लेकिन अल्लाह का बनते हुए डर लगता है। जिंदगी किसके लिए गुजारते हैं? लोगों के लिए, अपने लिए? वो जीना भी क्या जीना है जो अपने लिए जिए? अल्लाह के लिए जिएंगे तो अल्लाह के साथ मोहब्बत होगी। जब एक बंदे को इस बात का एहसास होता है ना कि मेरा रब बहुत बड़ा, मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह सुब्हान तआला मुझे कुछ हालात में डालकर मेरी तैयारी करवाते हैं। आयतें भी इतनी खूबसूरत हैं, और अमूमन जब सफर में एक इंसान जाता है तो उसका दिल चाहता है कि वो सामान मुझे अंदाजा था, क्योंकि फ्लाइट का टाइम ऐसा था कि जब वापस आऊंगी तो सीधा मुझे पता था कि स्कूल ही आना पड़ेगा, आना होगा। किताबें वगैरह सब मेरे पास थी, लेकिन सफर में कुछ इस तरह के हालात होते हैं और कभी बंदे के पास भी चीज होती है तो इंसान नहीं खोल सकता। लेकिन आज मैंने बहुत तैयारी की आपके इस सबक की। कैसे? नेचर पे, लिल्लाही माफिस समावाती व माफिर। ये देखिए स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स हैं, अगर आप देखना चाहें। आप देखिए कि जहाज में, ये जहाज था हमारा। अब यहां तो वो चीज, मैं वहां भी कह रही थी जब मैं खींच रही थी ये तस्वीरें, कि काश कोई इसको अपनी असल आंख से देखे। यकीन करें, फिर बंदे का क्या। ये देखिए एक जो चीज, आज हमारी फ्लाइट जो थी ना वो बहुत अर्ली मॉर्निंग थी, फजर पढ़ के जहाज में समझे बैठने वाली कैफियत थी। जब जहाज में बैठे गुप अंधेरा था, उसके बाद जहाज ऊपर चलना गया। थोड़ी देर बाद जब मेरी बाहर नजर पड़ी ना, यकीन करें कि करीब था कि मेरी चीखें निकल जाए। क्या मैंने देखा, ये तस्वीरें एक आपको दिखाती हूँ। अल्लाह करे कि अब आप को थोड़ी सी उधर, मुझे पता नहीं कि वहां भी कितना कुछ दिख रहा है, सिर्फ मेरे लफ्जों को महसूस करें। इस तस्वीर पर रुक के जरा थोड़ी सी बात करते हैं। ये देखिए बिल्कुल ये तस्वीर उस मंजर का एक अशरे अशीर क्या उसका सोमा हिस्सा भी नहीं है। ये देखिए ये आसमान के किनारे पर्पल कलर के थे, पूरा बॉर्डर मोव के शीट्स, डार्क लाइट लाइट, ये किनारे हैं। ऊपर चूंकि रात थी ना, नॉर्वे में आपको पता है कि सुबह शाम बदलती है ना, तो जो ग्रे के शेड्स हैं ना वो जब सूरज पड़ता है ना तो पर्पल बन जाते हैं। ये ऊपर जो था ना, यहां से जो ऊपर हिस्सा है ये आसमान था जाहिर है, और ये नीचे वाला हिस्सा ना ये सूरज उग रहा है, बिल्कुल पीच, खूबसूरत कलर जो होता है ना, फ्रेश कलर, सूरज की कहीं से अब सूरज निकलना चाह रहा है। तो मुझे ऐसे दिख रहा था कि कोई मेरे सामने बिल्कुल फैंटेसी है और चारों तरफ किसी ने पर्पल के न्यू डार्क डार्क लाइट ऐसे करते हुए शेड ब्लेंड हुए हैं, क्योंकि ऊपर से रात जा रही थी ना, ब्लैक कलर के अंदर जब ऑरेंज मिलता है ना तो पर्पल बन जाता है, और वो जब बन रहा था ना तो ये बिल्कुल, ये आपको देखिए ये पूरी पट्टी थी चारों तरफ जहां भी मैं देख रही थी, और ये नीचे जो जो बादल थे उसके नीचे से सूरज उग रहा था ना तो ये ऑरेंज था। फिर उस वक्त मुझे लगा कि लिल्लाही माफिस समावाती व माफिल अर्ध, हम कैसे उसकी कदर करें। ये देखिए एक और क्लोजअप है, थोड़ा सा ये पर्पल है, ये उसके लाइट यहां से, और ये नीचे आपको पता क्या दिख रहा है, बदलियां। ये पानी की ऐसे थी जैसे कभी आपने लस्सी में मक्खन बनाया, असली लस्सी घर में जो होती है ना तो उसके ऊपर मक्खन की ना वो ऐसे पुटकियां पुटकियां आ जाती हैं, ये बादल थे। अनबिलीवेबल, जिसको आप कहें कि मैं वहां बैठ के खुद को चुटकियां काट रही थी कि क्या ये हकीकत है। वल्ला ही मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे बच्चों की वो नहीं होती फैंटेसीज मूवी वीडियोस होती हैं, बड़ा एक परियों वाला माहौल बनाया हुआ है, बिल्कुल वो आंखों के सामने था। उसके बाद थोड़ी देर गुजरी, जब दिन खुल गया तो फिर ये तस्वीर थी, बिल्कुल तो रोशनी। अब ये देखिए वही रात दिन, वही जहाज है, वही सब कुछ है, लेकिन अब लग रहा है आपको पिंक कलर किधर गया। पर्पल किधर, लेकिन ये जहाज मुझे लगता है बहुत ऊंचा नहीं जा रहा था या बादल बहुत ऊंचे थे, बिल्कुल मैं ऐसे देख रही थी ना तो नीचे बादल ऐसे थे जैसे रुई के गोले नहीं होते ऐसे, क्या आपको मैं बताऊं कि जैसे कई लोगों के आजकल सर्दियों में स्वेटर और कोट जो होते हैं ना फर फर होते हैं और उसमें यूं डिजाइन बने। अब ये तो आप देख ही नहीं पा रहे ना कुछ भी क्या है, लेकिन ये ना इस तरह की फर, बिल्कुल वाइट प्योर फर जो होती है ना, कौन उस रब की बातें करे जिसके कब्जे में इतना कुछ है। ये देखिए ये भी एक मंजर है, लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्ध, उसका है सब कुछ। अब ये सारी चीजें देखें, ये एक दो तस्वीरें मैंने पहले की बनाई हुई थी, ट्रेन से एक दिन हम कहीं जा आ रहे थे तो ये देखिए, ये आपको यहाँ तो इतनी क्लियर नहीं दिखेगी लेकिन ये बीच में जो व्हाइट पैटर्न है ये शीप्स हैं और सब इस पहाड़ी पर। आज भी मैंने जब लंदन उतर रहा था जहाज तो बिल्कुल नीचे सब था, आपको बता कि लंदन ही गेट हैं तो दरख्त पीले और ब्राउन अभी दिखते हैं, यानी अनबिलीवेबल मंजर। और बीच में एक जगह मैंने देखा तो शीप्स भी घूम फिर रही थी। हम सिर्फ अल्लाह के बारे में ना अहकामात की नजर से देखते हैं, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं। हमने कभी अल्लाह ताला को उस नजर से नहीं देखा। अब ये तस्वीर बंदे को क्या कहती है? बिल्कुल एक ऐसी तस्वीर, मेरे पास कहीं और भी होगी पहले से, नॉर्वे में हम जब जाते हैं ओस्लो में तो तकरीबन 3 घंटे लगा ले, एक जगह जिसको ऑफ दी बोर्ड कहते हैं लोग, बस बारिश भी हो रही थी, पत्ते भी पीले थे उसमें, और ऐसे लग रहा था कि बस इसके आगे दुनिया खत्म हो जाएगी। हालांकि दुनिया खत्म कोई नहीं होती उसके आगे, ये सिर्फ एक हमारा ख्याल होता है कि ये होगा और वो होगा। फिर इसी तरह कुछ और चीजें देखिए कि अल्लाह का क्या कुछ है। ये देखिए, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज, सब कुछ उस मालिक है। कभी आप इस परिंदे को मेरी स्क्रीन से आके देखें ना, तो ऐसे मेरा दिल कर रहा है कि इसको मैं पकड़ लूं, जैसे आजकल वो फर के ग्लव्स और जूते, और ये ना, ये इतना सॉफ्ट परिंदा है। ये देखिए इसकी काली कलियां, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज है। इतना खूबसूरत काम करता मेरा रब, ये देखिए ये परिंदा क्या लग रहा है, भला आदमी लग रहा है ना, लड़ने के लिए तैयार है। कितनी मासूमियत है इसके। ये लाइट जरा बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए। कभी इसकी नोक को देखे ना, मुझे इधर इसके ऊपर ना ऐसे शाइन दिख रही है जैसे पॉलिश है। इसकी आंखें देखें, इसकी कलगी देखें, इसके ये देखिए जरा, खुद बनते हैं। आज मैंने एक अजीब सा मंजर देखा ना, जब हम जहाज से उतर गए तो नीचे थे तो एकदम आवाज आई जहाज की, तो वो बंदा आवाज से ऊपर ही देखता है, तो जब मैंने ऊपर देखा ना, तो बल्कि मैं बाहर थी बैठी हुई, याद आ गया, जहाज एयरपोर्ट पे थी तो बाहर बैठी हुई थी, तो ऊपर से आवाज आई तो मैंने देखा ना, तो जब मैंने ऊपर देखा मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि जहाज होगा, और वाकई वो जहाज था, लेकिन सबसे पहले मुझे एक बर्ड दिखा काला, तो मैं एकदम उसको देख के मुस्कुरा उठी। मैंने कहा इस दोनों में देखिए सिंपल कितना है और फर्क कितना है, लेकिन हम अल्लाह की बनाई भी तो सोचते नहीं। ये देख लीजिए आप इस परिंदे के रंग देखिए, इसकी नोक देखिए, किसने इसको ये सुर्ख रंग दिया, ये पीला रंग किसने दिया, ये आंखों का इसका नीलापन देखिए। और किया करें, अगर आप चाहते हैं ना अल्लाह से मोहब्बत करें तो आप इस कायनात से मोहब्बत करें। ये है लतीफ उन खबीर। आपका फ्रॉक खूबसूरत होता है कि इस मोर का, कितना थिन है, ऐसे लगता है कि जैसे नेट का फ्रॉक पहना हुआ इसने। ये देखिए, मैं तो अक्सर जब ये चीजें देखती हूँ मैं कहती हूँ ये रंग किसने भरे। आप देखिए जरा, आपको स्वेटर ही बुने हैं इस डिजाइन का, कितनी सिलाइयां, कितने रंग, क्या गाढ़ा फीका मोटा डिजाइन, हम स्वेटर बुन भी लें ऐसा, लेकिन कभी भी ये कभी देखा आपने ये वर्ड, ओल है ये एक खास किस्म का। और आप देखिए कि ऐसे नहीं लग रहा कि चमड़े को किसी ने उल्टा किया हुआ है, ये अंदर जो बाल है ना ये पीछे से देख रहे हैं, देखते जाएं और हैरान होते जाएं, कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। इंसानों ने रंग भला कहाँ से लिए? और आप देखिए इन बर्ड्स को ये पानी पीना किसने सिखाया, ये देखिए मोव मस्टर्ड क्रीम फॉन, पीछे डार्क ग्रे कलर, कोई है अंदर बैठ। और देखिए मैं जो गौर करती हूँ ना, वो ये देखती हूँ कि हर एक का रंग एक जितना, कभी आप देखेंगे ना बिल्कुल ऐसे लगता है एक डाई में से निकले हुए लोग हैं। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध, ये देख लीजिए तोता साहब, ये कलर कभी देखा अपने परिंदों का है ना? ये देखिए लिल्लाही मा फिस समावाती वा। इसके कलर तो गिने जरा, काले से लेके मेरे ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लैक, सब के शेड्स हैं। अच्छा मजे की बात देखिए, इनको नहीं पता ये इतने खूबसूरत हैं, ये भी हमारे ही लिए खूबसूरत है। कभी आपने किसी परिंदे को शीशे में नहीं देखा होगा कि शीशा लगा के देखे कैसा प्यारा लग, कितना प्यारा लग रहा हूं। हम कुछ अच्छा पहन ले तो शीशे की शामत आ जाती है। ये भी हमारे ही लिए हैं। और ये कहाँ फिर रहे हैं? जंगलों में, कोई म्यूजियम, कोई जू, हु केयर्स, अल्लाह ने इनको पैदा कर दिया, ये खूबसूरत है। ये देखिए की मलकियत को महसूस करें, ये वो रब है जिसका आप कलाम पढ़ने बैठे हैं, इधर ऐसे ही नहीं बैठे हुए, ये अल्लाह की रहमत ही था। ये देखिए इसके एक्शंस, ऐसे नहीं लग रहा रूठा हुआ है, मैं नहीं बोलता। ये देखिए, ये देखिए मोर, आपने रियल में मोर देखा कभी? कितनी चमक होती है उसके परों पे। ये देखिए, ये देखिए, लिल्लाही मा फिस समावाती वमा, ये रब के काम है। और आप सोचिए क्या हम भी